रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोशी बाढ़ से प्रभावित जलविद्युत परियोजनाओं समेत अन्य स्थानों में खोज और बचाव जारी। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने सुरक्षा निकायों के प्रमुखों के साथ की चर्चा। बाढ़ के बाद मिले शवों की पहचान के लिए नेपाल पुलिस द्वारा डीएनए परीक्षण प्रक्रिया शुरू। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से अब तक 10,451 लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ के कारण रसुवा में बाधित बिजली सेवा फिर से शुरू और क्षेत्रीय तनाव न बढ़ाने के लिए अमेरिका को ईरान की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने बताया है कि रसुवा बाढ़ से प्रभावित जलविद्युत परियोजनाओं में खोज और बचाव अभियान जारी है। नेपाली सेना विभिन्न देशों के विशेषज्ञ दलों के साथ मिलकर अभियान चला रही है। सेना के अनुसार अब तक विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। रसुवा गढ़ी जलविद्युत परियोजनाओं से 2 लोगों को बचाया गया है, जबकि मैलुंग खोला परियोजना से 9 और ऊपरी त्रिशोली 1 परियोजना से 254 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ऊपरी त्रिशोली 1 की सुरंग में अभी भी खोज अभियान जारी है, जहां नेपाली सेना के साथ कोरियाई और चीनी दल काम कर रहे हैं। नुवाकोट स्थित ऊपरी त्रिशोली 3A की सुरंग में नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस की 90 सदस्यीय टीम खोज एवं बचाव में जुटी है। ऊपरी त्रिशोली 3B परियोजना से 2 लोगों को बचाया जा चुका है और वहां भी अभियान जारी है। इसके अलावा त्रिशोली जलविद्युत परियोजना से 3, सौर्य परियोजना से 4 और देवीघाट जलविद्युत परियोजना से 5 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। भोटेकोशी बाढ़ में जान गंवाने वाले नेपाली और विदेशी नागरिकों के शवों तथा उनके अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार बाढ़ के बाद मिले शवों और अवशेषों की डीएनए जांच के जरिए पहचान की जाएगी। जिन शवों की पहचान नहीं हो सकी है, उनके परिजनों से आवश्यक डीएनए नमूने उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। नेपाल में मौजूद लापता लोगों के परिजनों में पिता, माता, बेटा या बेटी में से किसी एक करीबी रिश्तेदार का ताजा रक्त नमूना लिया जाएगा। इसके लिए महाराजगंज स्थित पुलिस अस्पताल की प्रयोगशाला या नजदीकी जिला पुलिस कार्यालय से संपर्क करने को कहा है। विदेशों में मौजूद परिजन अपने निवास वाले देश की अधिकृत प्रयोगशाला में डीएनए प्रोफाइलिंग कराकर उसकी डिजिटल प्रति नेपाल पुलिस के आधिकारिक ईमेल पर भेज सकते हैं। पुलिस के अनुसार डीएनए प्रोफाइल की तुलना के लिए संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम, पहचान संबंधी विवरण, लापता होने की तारीख और स्थान, अधिकृत फॉरेंसिक प्रयोगशाला की डीएनए रिपोर्ट तथा नमूना देने वाले व्यक्ति और लापता व्यक्ति के बीच संबंध का विवरण आवश्यक होगा। रसुवा स्थित भोटेकोशी नदी में भाद्र 10 की सुबह आई विनाशकारी बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 10,451 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार नेपाली सेना ने 3,344 नेपाली और 252 विदेशी नागरिकों का हवाई रेस्क्यू किया है। भाद्र 14 को ही जलविद्युत परियोजना क्षेत्र से 15 चीनी और 7 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव के लिए अब तक 411 हवाई उड़ानें संचालित की गई हैं। वहीं बाढ़ में मारे गए लोगों में से अब तक 951 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 4,247 लोग अभी भी लापता हैं। प्राधिकरण के अनुसार खोज एवं बचाव के लिए नेपाल पुलिस, नेपाली सेना और सशस्त्र पुलिस के 20,831 सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। प्रभावित लोगों के लिए खाद्यान्न, गैर खाद्य सामग्री, दवाइयां और स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाने का काम जारी है। भोटेकोशी बाढ़ के कारण ऊपरी त्रिशूली 3A जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास जारी है। भाद्र 10 को आई बाढ़ के बाद परियोजना में 35 से 40 श्रमिकों और कर्मचारियों के फंसे होने का अनुमान है। नेपाली सेना सहित बचाव दल रात भर से सुरंग तक पहुंचने के लिए खुदाई कर रहा है। सुरंग का पता लगा लिया गया है। रसुवा बाढ़ में जान गंवाने वालों का पशुपति क्षेत्र स्थित आर्यघाट एवं भस्मेश्वर घाट पर निःशुल्क अंतिम संस्कार किया जाएगा। पशुपति क्षेत्र विकास कोष ने रसुवा बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के निःशुल्क अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली हैं। पशुपति क्षेत्र विकास कोष संचालक परिषद के सदस्य केदारमान भंडारी ने ये जानकारी दी। कोष ने रसुवा बाढ़ में जान गंवाने वालों के निःशुल्क अंतिम संस्कार के लिए शरद राज वैद्य से संपर्क करने का भी आग्रह किया है। काठमांडू होते हुए केरुंग नाका से मानसरोवर कैलाश के दर्शन के लिए आए 149 भारतीय पर्यटक हुमला जिला के हिलसा नाका से वापस लौट गए हैं। भोटेकोशी बाढ़ के कारण केरुंग नाका पूर्ण रूप से अवरुद्ध होने के बाद पर्यटक हिलसा नाका से वापस गए हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
बाजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजी।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *14*15 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री पालेन्द्र शाह ने रसुआ की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न संकट के समाधान के लिए देश की सुरक्षा निकायों के प्रमुखों के साथ आज बैठक और चर्चा की। शाह ने प्रधान सेनापति अशोकला सिग्देल से अब तक किए गए खोज, बचाव, राहत और व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के बारे में ब्रीफिंग ली। वहीं प्रधानमंत्री शाह ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल के महानिरीक्षक नारायण दत्त पौडेल से भी ब्रीफिंग ली है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबार में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह और सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के बीच मुलाकात हुई। बैठक में रसुआ की भोटेकोशी में आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए जा रहे खोज, बचाव, राहत वितरण और नागरिकों के प्रबंधन के प्रयासों के बारे में चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत के साथ साथ क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना के विषय पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री शाह ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की जान माल की सुरक्षा, राहत सामग्री की सहज पहुंच और पुनर्स्थापना के लिए सरकारी तंत्र को पूरी क्षमता के साथ परिचालित किया गया है। पूर्वाधार विकास मंत्रालय ने बताया है कि त्रिशूली नदी पर स्थित पुलों को हुए नुकसान के कारण प्रभावित नुआकोट के त्रिशूली पार्क क्षेत्र को यातायात नेटवर्क से जोड़ने के लिए सड़क सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। इसी भादो 10 कते भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के कारण नुआकोट जिले के विभिन्न स्थानों पर सड़क संपर्क बाधित हो गया था। पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल के निजी सचिवालय के अनुसार गलछी त्रिशूली सड़क खंड के तहत त्रिशूली पुल के दूसरी ओर से त्रिशूली नदी के दाहिने किनारे होते हुए कल्लेरी टार, कोशीखोला, पीपल टार, दर्शन टार, छत्रेखोला और गौरी बेसी होते हुए त्रिशूली बाजार तक सड़क सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। सड़क सेवा शुरू होने के साथ ही नुआकोट के बड़ी संख्या में नागरिकों का जिला मुख्यालय से फिर से संपर्क स्थापित हो गया है। मंत्री लम्साल के निजी सचिवालय ने बताया कि सड़क संपर्क बहाल होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खोज एवं बचाव, राहत तथा आवश्यक सामग्री के आवागमन में भी आसानी होगी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने क्षेत्रीय तनाव न बढ़ाने की चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका की ओर से आगे कोई हमला किया गया तो उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी सेना के मुताबिक जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ड्रोन से निशाना बनाया गया है। ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड हुर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर रही थी, जिसे रोकने के लिए उसने सीमित सैन्य कार्रवाई की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की जवाबी कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई, बहरीन और कुवैत जैसे देशों को भी निशाना बनाया है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक पटाखा फैक्ट्री में आज हुए विस्फोट में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 घायल हैं। घायलों का इलाज प्रयागराज के SRN अस्पताल में चल रहा है। कौशाम्बी के DM अमित पाल शर्मा ने बताया है कि हादसे के बाद NDRF और SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थीं। उनके मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन अब लगभग पूरा हो चुका है। पटाखा फैक्ट्री में यह विस्फोट प्रयागराज कौशाम्बी सीमा के पास मोहम्मदपुर गांव में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। धमाके की वजह से पूरी पटाखा फैक्ट्री ढह गई, जबकि आसपास के करीब 100 मीटर के दायरे में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। कौशाम्बी के डीएम के मुताबिक हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसमें संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित जलविद्युत परियोजनाओं समेत अन्य स्थानों में खोज और बचाव जारी। बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने सुरक्षा निकायों के प्रमुखों के साथ की चर्चा। बाढ़ के बाद मिले शवों की पहचान के लिए नेपाल पुलिस द्वारा डीएनए परीक्षण प्रक्रिया शुरू। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से अब तक 10,451 लोगों का रेस्क्यू और क्षेत्रीय तनाव न बढ़ाने के लिए अमेरिका को ईरान की चेतावनी। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।